क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि आदमी एक मेज़बान के किसी के यहाँ यानी मेहमान बने और उसके घर की चीज़ों से वाबस्ता हो जाए? अगर ये बात हुई तो आप लोग उसे क्या कहेंगे? यकीनन अच्छे अल्फाज से उस शख्स को याद नहीं किया जाएगा। हम लोगों का भी यही है कि खुदा के करीब ये चीज़ यानी हर चीज़ खुदा की है, आपको मालूम है। और अगर हम लोग उसकी सारी चीज़ों से जो हम लोग मेहमान हैं इस दुनिया में वाबस्ता हो गए तो यकीनन हम लोग नुकसान उठाएंगे और न हम लोग खुश रह पाएंगे न खुदा को खुश कर पाएंगे जो हम लोगों का असल मेज़बान है। तो हम लोगों को बस खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें तौफीक दी कि ये सारी नेमतें हम लोग कुछ दिन के लिए इस्तेमाल कर सकें। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज सुबह फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इंशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा प्रोग्राम सुबह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाज़रीन आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और एक और प्रोग्राम में यानी प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ।
सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में भी, अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन की खिदमत में भी। और जैसा कि हसन ने कहा, एक प्यारा सा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम आज फिर आप लोगों की खिदमत में हम लोग लेके हाजिर हुए हैं और ये अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम आप लोगों के लिए हर रोज जो है प्रोग्राम एक खूबसूरत सा गर्मा गर्म सा प्रोग्राम आप लोगों की खिदमत में लेके आते हैं। और हसन कैसे हैं आप?
बस बिल्कुल ठीक ठाक। और बहुत सारी हम लोगों को ईमेल्स भी मिली हैं। अच्छा। और फेसबुक पे कमेंट्स भी हम लोगों के लिए आ रहे हैं तो हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। कई वैसे हम लोगों के लिए पैगाम भी थे और इस सिलसिले में बहुत ही यानी जबरदस्त चीजें हम लोगों के लिए भेजी हैं कई लोगों ने। एक तो लगारी साहब ने, मैं ये बता दूं कि उन्होंने बहुत एक जबरदस्त मशवरा हम लोगों को दिया है जो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर भरपूर तरीके से अमल करें। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि हम लोग साल भर हर रोज किसी ना किसी जगह पर ले जाएं और ज्यारत करवाएं।
अच्छा जबरदस्त।
सबको नहीं ले जा सकते लेकिन प्रोग्राम के जरिए तो ले जा सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बहुत ज्यादा इमामजादे ईरान में आपको बहुत ज्यादा इमामजादे मिलेंगे और जो है ज्यारतों की बहुत ज्यादा जगह मिलेंगी तो ये जो है बड़ा
हर शहर में हर महल्ले में यूं कह सकते हैं कि कोई ना कोई ज्यारत
की
है। तो ये एक चीज। और दूसरी एक और हम लोगों को ईमेल मिली थी मेरे ख्याल में सईद अब्बास साहब ने भेजी थी और उन्होंने इस हवाले से बात की थी खुर्रम के जो फनी प्रॉब्लम्स होती हैं बाज़ वक्त डबिंग के वक्त, तो उसके हवाले से भी मैं उनको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह हम लोग जरूर उसको उसका ख्याल रखेंगे। तो और बहुत सारी दीगर ईमेल्स और
बड़ी अच्छी बात है
और ये सब आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग तवज्जो दे रहे हैं इस प्रोग्राम पर और आप अपना प्रोग्राम समझ कर इसको मशवरे दे रहे हैं, हम लोगों को मशवरे दे रहे हैं ताकि इसको हम बेहतर बना सकें। और आपका वक्त जो है, जो सुबह को आप उठते हैं स्कूल या ऑफिस जाने से पहले आप वक्त सर्व करते हैं, वो बेहतरीन तरीके से वो वक्त आपका सर्व हो। तो हमारे साथ रहिएगा आज के प्रोग्राम सुबह जिंदगी में। और
थोड़ी सी बात, क्या अगर हमारे पास वक्त है तो मैं, मेरा जी चाह रहा थोड़ी सी बात जो आज हफ्ते का मौजू इस सिलसिले में कर
लीजिए, उसके हवाले से बात करें। बिल्कुल
जी, कर लेते हैं जी। एक चीज मैं पढ़ा था अभी सुबह सवेरे और उस पर लिखा हुआ था कि हम हर शख्स अपनी नाकामियों से सीखता है, अपनी कामयाबियों से नहीं सीखता। ऐसा क्यों है? कामयाबियों से क्या नहीं इंसान सीख सकता?
उसमें कामयाबियां, बहरहाल उसमें इंसान के मेरे ख्याल में जो यानी अखलाक होता है इंसान का, जो खास कह सकते हैं कि अंदर जो चीज़ होती है इंसान के, वो ये कि अच्छाइयों को बहुत जल्द भूल जाता है, बुराइयों को काफी दिन तक याद
रहता है।
उसी की वजह से मेरे ख्याल में ये चीज भी हो जाती
बिल्कुल
है।
बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जब इंसान को कामयाबी मिलती है तो वो शख्स जो है भूल जाता है जल्दी से कि किसने उसकी मदद की, किस तरह वो आगे आया और क्या हुआ, और वो बस वो खुशी।
इस हवाले से एक वाकया मुझे याद आया तो मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, नहीं है, बाद में अगर वक्त मिला तो यकीन नाज़रीन की खिदमत में वो चीज बताऊंगा। तो आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ रहिएगा, बहुत बेहतरीन चीजें आपके लिए हमने तैयार की। तो हमारे साथ रहिएगा प्रोग्राम सुबह जिंदगी में। जी नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आज की सुबह भी आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से शुरू की होगी, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं या स्कूल जा चुके होंगे मेरे ख्याल में ना सभी।
बिल्कुल जा चुके होंगे, तो आप जो है हमारी, इसका मतलब है अभी अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पे या यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, जो अपने बच्चों को बाद में दिखाएं जरूर, बहुत ही अच्छी चीज हम पेश करने जा रहे हैं और एक बहुत अहम चीज हम बताने जा रहे हैं तो
जी
आज के प्रोग्राम में,
ठीक है
तो वो जरूर देखिएगा। आज के मौजू के हवाले से बताइए
जी, आज का मौजू जो है डॉक्टर नादरा दादार हमारे साथ मौजूद होंगी स्टूडियो में और हेपेटाइटिस के बारे में, हेपेटाइटिस बी के बारे में गालिबन वो हमारे से गुफ्तगू करेंगी और इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन के, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है वो एक बहुत अहम मसला है और बहुत एक संजीदा बीमारी है, उसके बारे में बात की जाएगी। ये तो हमारे मेहमान की बारे में मैंने बता दिया आपको,
एक खास किस्म की बीमारी के बारे में मैं भी बात करने जा रहा
जी
हूँ
जी
आज, तो वो भी आप तवज्जो करिएगा। आप भी
क्या बीमारी है थोड़ा
नहीं,
सा
ही नहीं, बहुत ही मजेदार सी चीज है।
अच्छा
बीमारी तो मजेदार नहीं है, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में,
ठीक
लेकिन
है,
उसके जो बाज नतज निकल सकते हैं उसके हवाले से,
उसके बारे में
तो आज का प्रोग्राम
सही है,
यकीन हमारे
ठीक है
नाजरीन देखेंगे।
जी बिल्कुल। सिर्फ ये बताते चलूं कि हमारे पास फेसबुक ऑनलाइन यहां पर स्टूडियो में मौजूद है, आप लोग कोई भी कमेंट कोई भी मैसेज देंगे तो हम फौरन, कोई भी सवाल करना चाहेंगे, कोई मशवरा देना चाहेंगे, हफ्ते के मौजू के बारे में आपका कोई मशवरा है अगले हफ्ते के मौजू के बारे में वो भी हमें बताएं, सवाल करना चाह रहे हैं हमारे मेहमान जो हमारे माहिर आते हैं उनसे, या हफ्ते के मौजू के बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो जरूर फेसबुक पे मैसेज रिकॉर्डर के जरिए या कॉल कीजिए, हम आपको कॉल बैक करेंगे।
चलते हैं एक मेडिकल प्रोग्राम देखते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।
खातिनों हजरात अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी के बारे में। गुर्दे की पथरी एक इंतहाई तकलीफ दह मर्ज है और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि तमाम दुनिया की तकरीबन 5 से 10% पॉपुलेशन आज गुर्दे की पथरी का शिकार होती है। गुर्दे की पथरी गुर्दे में भी हो सकती है या गुर्दे से नीचे जिसको यूरेटर कहते हैं और मसाने में भी हो सकती है। पथरी गुर्दे में हो या यूरेटर में हो, दोनों ही सूरतों में इंतहाई शदीद किस्म का दर्द होता है जिसको अनबेरेबल पेन कहें तो गलत नहीं होगा। कई बार इंतहाई बहुत ही परेशानी का इंसान शिकार होता है और उसको काफ़ी दिक्कतें उसकी वजह से उठानी पड़ती हैं। पथरी होने की बहुत सी वजूहात हैं जिसमें एक वजह यह है कि पानी का कम पीना या ऐसे क्लाइमेट में काम करना जो हॉट क्लाइमेट हो, या ऐसे लोग जो कि गर्म मशीनों पर जैसे बॉयलर्स हैं या और इस तरह की जहाँ से हीट निकलती है वहाँ पर काम करते हैं, वो आम तौर से गुर्दे की पथरी का शिकार होते हैं। कुछ ऐसी ग़ज़ाएँ भी हैं जिनको खाने से लोग जो है गुर्दे की पथरी के लिए काफ़ी प्रोन होते हैं, यानी उनके अंदर गुर्दे की पथरी पैदा होने का काफ़ी अंदेशा बढ़ा रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि उन तमाम चीज़ों के बारे में हम पहले से जो है केयरफुल रहें और गुर्दे की पथरी को अपने आप से गुर्दे की पथरी से अपने आप को बचा सकें। गुर्दे की पथरी होने की सूरत में जैसे मैंने अभी कहा कि शदीद दर्द होता है और ये दर्द गुर्दे के मुकाम पर होता है। जब पथरी यूरेटर में होती है तो ये दर्द गुर्दे के मुकाम से नीचे की तरफ जो है रेफर करता है और वह भी इंतहाई शदीद दर्द होता है। कई बार पेशाब में खून आ सकता है या पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, यानी पस सेल्स पेशाब में पथरी की वजह से आ सकते हैं। अगर ये पथरी गुर्दे को पूरे तौर से बंद कर दे, यानी कि जो गुर्दे से एक्सक्रीशन हो रहा है यूरिन का उसके रास्ते को बंद कर दे, तो गुर्दा अपने साइज़ में बड़ा होने लगता है और हालत यहाँ तक पहुँचती है कि गुर्दा फेल हो जाता है, जिसको किडनी फेल्योर के नाम से हम लोग जानते हैं। कई लोग इस बात से मुतमिन रहते हैं कि उनके गुर्दे में पथरी तो है लेकिन उनको उसके अलामत नहीं हो रही। ये हो सकता है कि गुर्दे में पथरी हो लेकिन दर्द ना हो रहा हो, लेकिन ये ऐसी ही सूरत में मुमकिन है जबकि पथरी जो है वो पूरे तौर से गुर्दे को ब्लॉक किए हुए हो, उस सूरत में दर्द तो नहीं होता लेकिन गुर्दे के मुकाम पर भारीपन महसूस होता रहता है और जब तक आप डॉक्टर के पास तक पहुँचते हैं तब तक वो सूरत हाल पैदा हो चुकी होती है कि आपका गुर्दा बेकार हो चुका हो। इसलिए जब भी आपको ये मालूम हो जाए कि आपके गुर्दे में पथरी है तो कभी भी आप इस बात का इंतज़ार न करें कि दर्द होगा तो हम दिखाएंगे या दर्द नहीं हो रहा तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा वक्त आ सकता है कि जब आपका गुर्दा बेकार हो जाए और आप मुतमइन रहें कि नहीं मुझको तो कोई परेशानी नहीं थी। सवाल ये उठता है कि आपको कैसे मालूम हो कि गुर्दे में पथरी है। जब भी आपको गुर्दे के मुकाम पर शदीद दर्द हुआ हो तो ज़रूरी है कि डॉक्टर की सलाह लें और इन्वेस्टिगेशंस कराएं। गुर्दे की पथरी के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशंस को ही ज़्यादा महंगे इन्वेस्टिगेशंस नहीं हैं, एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराने से ये मालूम हो सकता है कि गुर्दे में पथरी किस मुकाम पर है और कितनी बड़ी है, आया कि उस पथरी को दवाइयाँ देकर निकाला जा सकता है या पथरी इतनी बड़ी है कि उसके लिए सिर्फ सर्जरी ही करना एक ऑप्शन है। इसलिए ये तय करना होगा कि दवाइयाँ देकर गुर्दे की पथरी को निकाला जाए या सर्जरी के लिए पेशेंट्स को टेकअप किया जाए, क्योंकि अगर आपने गलत फैसला कर लिया तब नुकसानात उसके ज़ाहिर हो सकते हैं। गुर्दे की पथरी हो जाने की सूरत में जबकि पथरी इस काबिल हो कि उसको निकाला जा सके, जो कि इस पर डिपेंड करता है कि गुर्दे की पथरी किस मुकाम पर है और उसका साइज़ कितना बड़ा है, यानी आप उसको निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे तभी दवाइयाँ देने की ज़रूरत है। कुछ दवाइयाँ ऐसी मौजूद हैं जिसमें आप कुछ तहजरुल यहूद का इस्तेमाल कर सकते हैं, माजून संगे सरमाही है, माजून अकरब हैं, इन चीज़ों का, और डायूरेसिस करने के लिए यानी कि पेशाब को ज़्यादा लाने के लिए शरबत बजूरी है, शरबत आलू वालू, इन चीज़ों का इस्तेमाल, और जैसे मैंने कहा कि पानी की मकदार बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए और पानी भी जो है वो अच्छे किस्म का पानी हो। अच्छे किस्म के पानी से मुराद ये है कि पानी के अंदर हार्डनेस ज़्यादा नहीं हो, अदरवाइज़ पानी के अंदर जो सलूट्स हैं वही दोबारा स्टेग्नेंट होकर के स्टोन का फॉर्मेशन कर देंगे, पथरी को बना देंगे और वो पथरी की बीमारी बार बार आपको परेशान करती रहेगी। इसके अलावा ज़रूरी है कि वो लोग जिनके अंदर पथरी की बीमारी हो चुकी है या जो ऑपरेशन भी करा चुके हैं उनके अंदर दोबारा पथरी होने के काफ़ी इम्कानात होते हैं और पथरी उनके अंदर होती है, उन लोगों को बहुत ही केयरफुल रहना होगा कि दोबारा पथरी ना बन सके। इसके लिए उनको पानी की ज़्यादा मकदार लेनी होगी, क्लाइमेट का लिहाज रखना होगा, बहुत हॉट क्लाइमेट में अगर काम करना है उनको तो पानी की मकदार को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जैसे कि पनीर है और गोश्त है, इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा, टमाटर है, पालक, इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ये टमाटर और पालक लेने से ख़ासतौर से जैसे टमाटर का छिलका कई बार जो है वो फंस जाता है और वो नीडस का काम करता है और उसके ऊपर स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो चीज़ें जो कि एक तरह से शकील हैं, शकील गज़ाएँ हैं, उनसे परहेज़ करना चाहिए। और फ्रूट्स में जैसे स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स हैं, इन फ्रूट्स को ख़ास तौर से अवॉइड करना चाहिए कि इनको लेने में एहतियात करें या उनको बिल्कुल ना लें। शुक्रिया।
आपको पसंद आई होगी और मुफीद होगी आप लोगों के लिए। और इस वक्त डॉक्टर नादरा दादार साहिबा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर उनके पास चलते हैं और अपनी गुफ्तगू का वो लोग आगाज़ करें।
बहुत शुक्रिया हसन जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला।
सबसे पहले मैं भी सबको सलाम अर्ज़ करते हूँ और आज के जो मौजू है हमारा वो हेपेटाइटिस बी है।
सही।
जो कि बहुत ज़्यादा और पूरे दुनिया में ज़्यादा हो जाता है और ख़ास तौर पर कैरियर फॉर्म में।
ठीक।
सो ये हम शुरू करेंगे हेपेटाइटिस जो यानी कि इन्फ्लामेशन या जिगर के वो सोज बढ़ने का
सूजन वरम हो गया, वरम हो गया। अच्छा ये डॉक्टर टाइटिस, टाइटिस का जो
टाइटिस है इन्फ्लामेशन जो हो या वरम हो ना उसको
किसी भी चीज में हो सकता है।
बिल्कुल।
ठीक है
ना, कि अपेंडिसाइटिस होती है, मास्टाइटिस होती है,
ठीक है,
यानी کولائٹس ہوتی ہے، یہ سارا جو ہے نا ٹی آئی ایس جو بیچ میں آ جاتا ہے آخر میں آ جاتا ہے، یعنی کہ انفلامیشن
جو ورم، یہ اب ہمارے ناظرین جہاں بھی سنیں گے ٹائٹس،
بالکل یعنی کہ ورم ہے،
ورم ہے
جی، سوزش یا ورم،
اس کی وجوہات کیا ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں.
ایگزیکٹلی،
ٹھیک، چلیں ہیپاٹائٹس کی طرف چلتے ہیں.
یہ جو جگر کے جو ورم یا ہیپاٹائٹس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہیپاٹائٹس جو انفلامیشن ہوتا ہے، لیکن آج کی جو انفلامیشن ہے یا ورم ہے وہ ہے ہیپاٹائٹس بی، کہ وہ وائرس ہوتی ہے، یہ وائرس کے ذریعے خاص قسم کے وائرس ہے، اس طرح کی ہیپاٹائٹس اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، ای بھی ابھی ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن وہ بی جو ہے نا زیادہ تر پورے دنیا میں ہے،
ٹھیک ہے.
اس طرح کے وہ ریسرچ ہو گیا کہ تقریباً ایپیڈیمک ہوتی ہے پورے ایشیا اینڈ افریقن میں.
ایپیڈیمی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سامان ناظرین کو بتاتی
ہیں، میرے تقریباً 4-5 پروگرام پہلے ہی میں نے عرض کر دی ہوں کہ ایپیڈیمی جب ہوتی ہے یعنی پورے ایریا میں ہو جاتے ہیں،
ایک ایریا میں پھیل گئی،
پھیل گئی،
ٹھیک ہے.
لیکن اینڈیمک ہوتی ہے ایک حصے میں ہوتی ہے، یعنی
ایک
شہر میں، ایک
دیہات میں،
دیہات میں، پروونس میں، ایسے ہی ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے.
اسی لیے یہاں پر ایشیا اینڈ افریقہ ایپیڈیمک ہوتی ہے ہیپاٹائٹس بی کا، اور چائنا میں اینڈیمک ہے،
ٹھیک.
اور ایک ریسرچ کے معاملے میں 350 million پیپل ان دا ورلڈ اور دا کیریئر، کیریئر کو معنی یہ ہے کہ وہ جرثوم اس کے جسم میں ہے پیشنٹ کا ہیپاٹائٹس بی کا، لیکن جب کیریئر ہم کہیں گے چونکہ بیماریوں بھی ہے جنرلی ٹاکنگ، سو یہ ہے نا کہ وہ جو کیریئر ہے یعنی کہ وہ جرثوم ہے اس کے اندر ہے لیکن ایکٹیو نہیں ہے، اس طرح کے
ریمیشن کے ٹائم
بیماری کو نا علائم کوئی نہیں دکھا رہے،
ٹھیک ہے.
سو یہ ہے کیریئر، لیکن وہ پھر ابھی جب ہم آئیں گے آہستہ آہستہ، پھر اس کے بعد یہ روٹ جو ہے کہ یہ جرثومہ کہاں سے، ایک جرم ہیپاٹائٹس بی جو ہے اس کے یہ جرثومہ ہے کہ وہ زیادہ تر خون میں،
ٹھیک ہے،
خون میں یا وہ جو مایا جو جسم سے نکلتے ہیں، خاص طور پہ خواتین اور مردوں کو یہ جینیٹل ایریا سے
بالکل
اس سے چلے میں آ جاتے ہیں، یہ جب ایکیوٹ کیس میں ہو یعنی ہاتھ کیس میں ہو، یہ چیز ہے.
لیکن تھوک جو ہے آنکھوں
جب مزمن یا کرونک ہیپاٹائٹس اگر ہو، ہیپاٹائٹس بی ہو، پھر وہ جرثوم ہے سلائیوا میں یعنی کہ تھوک میں جی، اور یورین میں یا پیشاب میں، اور وہ آنسو میں آ جاتے،
ٹھیک ہے.
اس کے وہ جو انکیوبیشن پیریڈ ہے یعنی اس کے دورانیہ ہوا، وہ 3 دن سے لے کر 3 ماہ تک ہو سکتے ہیں کہ علائم،
یعنی یہ جراثیم اس بدن کے اندر بیٹھا رہے گا
جی،
ٹھیک ہے، اور بیماری ایجاد نہیں کرے گا،
انکیوبیشن یعنی اتنا دورانیہ میں ہی ہے، اور یہ سیلف لمیٹڈ ہے یعنی وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں.
اچھا،
یہ پہلے بھی میں نے عرض کی ہوں کہ یہ جو وائرل انفیکشن ہوتا ہے اینٹی بایوٹک، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے،
اینٹی
بایوٹک یہ جرثومہ کوشن ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
لیکن اگر اس میں یہ وائرل انفیکشن کے ساتھ اگر بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے پھر وہ اینٹی بایوٹک وہ بھی ڈاکٹر کے یعنی کہ مشورے کے حساب سے استعمال کرنے.
اچھا، ہمارے یہاں تو اینٹی بایوٹک ہر چیز کے لیے دی جاتی ہے،
بالکل غلط،
کچھ بھی ہو جائے،
زکام
میں بھی درد ہو تو لوگ
دان میں درد ہے سیپٹران ڈیس ضرور وہ لوگ لیتے ہیں، نہیں یہ غلط ہے، بیکاز جب تک وہ انفیکشن نہ ہو یعنی کہ وہ بیکٹیریل انفیکشن نہ ہو اینٹی بایوٹک کوئی اثر ہی نہیں کرے گا،
ٹھیک ہے.
سو اس میں یہ انکیوبیشن ہم نے بتایا، روٹ ہم نے بتایا، پھر اس کے بعد ہم آئیں گے اس کا علامت کیا، رسک فیکٹر،
ٹھیک ہے،
کون کون لوگوں کو یہ ہیپاٹائٹس بی ہو یہ امکان ہے وہ ہو جائے،
ٹھیک ہے.
سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ کھانے پینے میں نہیں ہوتے،
یعنی کھانے پینے سے پھیلے گا،
کھانے پینے سے نہیں پھیلے،
یعنی اگر میں ایک بندے کے ساتھ جس کو ہیپاٹائٹس بی ہے اس کو کھانا کھاؤں، پانی پیوں، تو
ہاتھ ملائیں آپ اور یہ اس طرح کے بچوں کو آپ کیس کریں، یہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا،
نہیں پھیلے گا، ٹھیک
ٹھیک ہے. پھیلنے کا ذریعہ یہ ہوتے کہ خون کے ذریعے ہوتے اور جو جسم سے پانی نکلتے ہیں وہ یورین نہیں ہے، آنسو نہیں ہے، اور تھوک بھی نہیں،
ٹھیک ہے.
پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ ان لوگوں کا اس طرح کا ہم پیرا میڈیکل،
ٹھیک،
اگر کوئی پیشنٹ ہو ایکیوٹ کیس میں، پھر اگر ان کے اگر ہم اس خاص طور پہ نرسز کو جب یہ ڈرپ لگانے چاہتے ہیں یا سوئی لگانے، پھر اس میں اگر وہ خون اس کے اگر اس کو چوٹ لگ جائے، اس پیشنٹ کے خون اس میں لگ جائے، بلڈ ٹرانسفیوژن،
ٹھیک ہے،
چونکہ بہت عام ہے کبھی خون کی کمی ہوتی ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے،
حادثہ وغیرہ ہو گیا،
بالکل یہ ہے. پھر اس کے بعد علم جو رسک فیکٹر ہیں جو لاسٹ 3 منتھس آف پریگنینسی ہوتی ہے حمل کے دوران، اگر ماں، بالکل، اگر ماں ہیپاٹائٹس کی شکار ہو جائے، وہ جو بیبی پیٹ میں ہے उसको भी हो सकते हैं
आखिरी तीन महीनों में अगर
या लास्ट ट्राइमेस्टर फिर ये हो सकते हैं कि बच्चे को ये भी हो जाए. लेकिन दूध पिलाने जो बच्चे पैदा हो माँ उस वक्त नहीं, लेकिन माँ बाद में इसमें ये शिकार हो जाए. लेकिन दूध पिलाने से ये बीमारी बच्चों क्योंकि वो क्रॉस नहीं करते, ये वायरस दूध से क्रॉस नहीं करते, वो बिल्कुल माँ दूध पिला सकते हैं बगैर कोई प्रॉब्लम.
सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. छोटा सा हमने वक्फा लेना है यहाँ पर, बड़ी मुफीद और बड़ी जल्दी जल्दी डॉक्टर साहब जो बड़े अहम जो उसके नुकात हैं वो बता रही हैं और मेरे लिए तो बहुत मुफीद थी. उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए मुफीद होगी. चलते हैं हसन के पास. हसन हमारे लिए
हम लोगों के पास भी एक यानी फेसबुक पे एक कमेंट आया था कि इस हवाले से हम लोग यानी मुख्तलिफ सेहत के बारे में बताएं और वर्जिश के बारे में. वर्जिश भी खुद बहुत ज्यादा अहम चीज है, यकीनन बहुत सारी बीमारियों से हम लोगों को दूर कर सकती है. और इसमें यानी तवज्जो खास हम लोगों को ये देनी चाहिए कि हर चीज उसूल पर हो. बहुत सारे काम यानी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जनूबी एशिया में जो होते हैं वर्जिश करते हैं तो अचानक ऐसी वर्जिश शुरू हो जाते हैं वो सारे वो जो ऊपर नीचे सब निजाम जो है दरहम बरहम हो जाते हैं.
प्लान करना चाहिए
बिल्कुल हर चीज के लिए और देखना चाहिए कि एक हमें याद है कि एक प्रोग्राम में इस बात पर ताकीद हुई थी कि हर एक के लिए मुख्तलिफ किस्म की वर्जिश भी होनी चाहिए.
ऐसा ही है वजन के लिहाज
से इंशाल्लाह बहुत ख्याल रखना चाहिए. चलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर. फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह जिंदगी में. बात हो रही है हेपेटाइटिस के हवाले से डॉक्टर नादरा दादार. इसके हवाले से बहुत ही मुफीद उन्होंने मुख्तलिफ चीजें बताई, लेकिन एक सवाल था हमेशा से यानी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि हेपेटाइटिस जो है वो पानी के जरिए पानी की ही बीमारी है, पानी गंदा गंदे होने की बीमारी है. तो यानी ये बात दुरुस्त नहीं है?
नहीं.
अच्छा, यानी वाकई ये बिल्कुल नई चीज थी क्योंकि बहुत सारे लोगों का
हेपेटाइटिस के मुख्तलिफ हेपेटाइटिसों के बारे में कहा जाता है कि पानी जो है गंदा आ रहा है तो उस वजह से टाइफाइड हेपेटाइटिस ये जो बीमारी.
बिल्कुल इंशाल्लाह और हम इसको
बात करेंगे
इसमें बीच में. लेकिन जो अभी हेपेटाइटिस खास तौर पर यह खून के जरिए हो जाते हैं और ये जो जिनसी रवाबित होते हैं उसमें पानी की वजह से होते हैं. फिर उसके बाद ये इस तरह का मैंने कहा प्रेगनेंसी के दौरान.
माफ कीजिए डॉक्टर साहब, जो अभी जो थूक है या आंसू है इससे बिल्कुल नहीं हेपेटाइटिस बी होगा?
एक्चुअली अब देखिए यह हार्ट जो बात है ना उसके बारे में बात करें.
ठीक है,
जब हम क्रोनिक या मुजमिन के बारे में पुराने हो चुके हैं. ये जरसूम अब मतलब इसको लाइफ साइकिल जिसको चरखे से मैं बताऊंगी कि वो कैसे होती है.
ठीक है,
जब ये खून के जरिए वो जरसूम वो पहुंच जाते हैं जिसम में और वो सीधा जिगर में जाते हैं.
ठीक है,
ठीक है ना. जब जिगर में चले जाते हैं तीन दिन के अंदर जिगर में काफी वो खलियां होती हैं.
ठीक है,
उसमें अंदर जाके ना रिप्लेस हो जाते हैं.
ठीक है,
फिर वो जिगर को ये खलियों को खराब करके वो खुद मल्टीप्लाई हो जाते हैं,
आजाद
होना शुरू, वो बड़े हो जाते हैं, फैलने शुरू हो जाते हैं.
सही है,
फिर जिगर जो हमारा ये एक फैक्ट्री होती है एक कारखाना होती है उसके काम को वो खत्म करेगा.
ठीक है,
फिर ये ना कि पहले तीन चार दिन अलामत क्या होते हैं, अलामत लोगों को बाद लोगों को लूज मोशन के साथ हो जाते हैं.
अच्छा, सही.
हल्का बुखार हो जाते हैं यानी कि 99-100 तक बुखार हो जाते हैं. फिर बाद लोगों को लूज मोशन आने शुरू हो जाते हैं.
सही,
लूज मोशन आने के साथ फिर ये कि पेशाब जो है ना पेप्सी के रंग काला रंग शुरू आने शुरू हो जाते हैं.
अच्छा,
उस पहले दिनों में ये कोई पीला रंगत नहीं होता. अगर वो पीला रंगत नजर आए यानी कि इन्फेक्शन या जो जो बीमारी जो है ना फैल चुकी है और वो दूसरों को भी बीमार कर सकते हैं.
ठीक है,
ठीक है. फिर उसके बाद ये कहने पेशाब जो है वो ब्राउन रंग या काला रंग देते हैं. फिर उसके ये कमजोरी महसूस करते हैं, फिर बेजान होते हैं, फिर उसके बाद भूख नहीं लगते हैं.
ठीक है,
फिर ये शुरू शुरू की अलामत होती है. और उसके बाद जब लूज मोशन हो जाए हो सकता है कि बिल्कुल बुखार भी ठीक हो जाए, लूज मोशन भी हो या जो दस्त है वो भी ठीक हो जाए.
ठीक है,
लेकिन 10 दिन के बाद
ठीक है
वो ऐसे ऐसे अलामत वो पीला रंगत शुरू होने जाए. क्योंकि ये 10 दिन 3 से 10 दिन के अंदर वो बाद पेशेंट मरीजों को 3 माह के बाद
ठीक है
ये क्या हो जाता है जिगर को काम करना बिल्कुल खत्म हो जाता है.
डॉक्टर साहब कौन सी अलामत ऐसी है जिसको वक्त जब एक देखे शख्स वो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाए?
अगर भूख ना लें, उल्टियां आ जाएं, फिर उसके बाद लूज मोशन, डार्क यूरिन हो या इनके काला रंग के पेशाब आ जाए, काले रंग के पेशाब आ जाए.
ठीक है,
ये पखाना जो है वो भी डार्क कलर के शुरू में शायद नॉर्मल हो लेकिन पहले ये 2-4 दिन में डार्क कलर यानी कि वो ब्लैक कलर या काला रंग के पखाना आने शुरू हो जाते हैं. फिर उसके बाद वो अगर पेट में दर्द महसूस करे,
ठीक है,
जहाँ पे सोजिश हो ना वहाँ पे वर्म है, वर्म में फिर दूसरी जगह में वो दर्द महसूस होती है. फिर उसके बाद ये होगा कि درد, اور یہ جیسے میں بعض مریضوں کو خارش ہونے شروع
ہوتی ہے
بغیر وجہ, وہ کہتے ہیں الرجی, یہ الرجی, اگر یہ چیز ہے بیچ میں الرجی کے ساتھ ضرور ڈاکٹر کے پاس.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. حسن کے پاس چلتے ہیں, حسن بھی ہمارے لیے کچھ مزے مزے کی باتیں لے کے آئے ہیں, تو وہ سنتے ہیں. جی
بالکل, ایک بہت ہی میڈیکل سے مربوط ہے, لیکن بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اخلاق سے بھی مربوط.
اچھا,
اس میں یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں برازیل میں, ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو برین اسٹروک ہو گیا, اور وہاں پہ یعنی یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ جو مشکلات جو پیش آ جاتی ہیں اس کے بعد, وہ اس کا کافی دوچار ہو گئے. لیکن جب وہ ہوش میں آئے تو ان کے ساتھ ایک حادثہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ وہ کافی حد تک سخی ہو گئے.
اچھا,
میں کوشش کر رہا ہوں وہ تصویریں ڈھونڈنے کی.
آپ بھی تصویریں دکھانے میں سخی ہو جائیں. اس میں یہ ہے کہ
عام حالات میں بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے سخی ہونا, لیکن جب حد سے زیادہ ہو جائے تو اپنی مشکلات اس میں پیدا ہو سکتی ہیں. اس میں یہ ہو گیا ان کے ساتھ کہ وہ ہر دوسرے آدمی کی مدد کرنے لگے, اور معلومات تقریباً اپنے گھر کا خرچ, ان کی تنخواہ جتنی تھی وہ اپنی پوری تنخواہ اس میں لگانے لگے. جو کوئی ان کو نظر آ گیا مدد کرنے کے لیے وہ اس کو دے دیا تنخواہ, اور اس کے علاوہ جو کوئی نظر آ گیا جو بھوکا ہے اس کے لیے کھانا خرید دیا, جو غریب ہے اس کو یہ اس کی امداد کر دی, یا کوئی بوڑھا دکھ گیا تو اس کو مدد اس کی مدد کر دی. تو یہ بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ پیش آنے لگیں. ڈاکٹرز نے جو چیز کہی وہ یہ ہے کہ دماغ میں جو حصہ ان کا متاثر ہوا ہے, یعنی ہر حصے کی الگ جگہ ہوتی ہے, وہ جو ہے اس سے پہلے یہی شخص جو ہے کافی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ کنجوس طرح کا آدمی تھے, اور لیکن اس کے بعد یہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ وہ کافی حد تک مدد کرنے لگے, تو وہ حصہ دماغ کا متاثر ہو گیا ہے جو اس سے قبل اس کا یہ تھا کہ یعنی دقیق طور پر وہی جگہ وہاں پہ یا خون نہیں وہ آکسیجن نہیں پہنچے, تو اس کی وجہ سے یہ مشکل ان کے ساتھ پیش آ گئی. اس میں ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آ گیا کہ اس میں مدد کرنے پر حد سے زیادہ, تو اس میں ایک دو تین بچے اسکول میں گئے, تو ٹیچر نے پوچھا کہ آپ کا کیا آج آپ نے کسی کی مدد کی, آپ نے کوئی اچھا کام کیا؟ کہنے لگے ہاں ہاں بالکل ہم نے. ایک بچہ اٹھا کہا کہ ہم نے ایک بزرگ کو سڑک پار کروائی, دوسرا بھی اٹھا اس نے بھی یہی کہا, تیسرے نے بھی یہی کہا, تو ٹیچر نے کہا یہ کیسے تینوں نے ایک ہی کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی وہ گزرنا نہیں چاہ رہے, تو مجبوراً ہم تینوں کو مل کے ان کو سڑک ہم لوگوں نے پار کروائی ہے. تو بہرحال اس میں زبردستی کر کے بھی بہت سارے اچھے کام ہو سکتے ہیں. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ایک اور زبردست چیز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں. آپ کے اس تصویر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت زبردست ہے, اگر میں ساتھی اور قریب سے دیکھا.
میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ سوڈا کم, جو بھی ہے پیپسی ہے کوکا کولا جو بھی ہے وہ کم ڈالا گیا, برف زیادہ ڈالی گئی ہے.
اس میں
کنجوس بندے کا کام ہے.
ہاں اس میں وہ وہاں پہ ہوتا ہے نا, اس میں پانی ڈالتے ہیں اچھا خاصا ڈرنکس میں, چلے وہ زیادہ مفید کام کرتے ہیں. یہ آپ کو آپ یاد رکھیے, اسی کے بارے میں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے دن میں چار گلاس سے زیادہ, چار گلاس ہی یہاں پر ہیں, کولڈ ڈرنک پیتے ہیں, کسی ٹائپ کی فیزی ڈرنک پیتے ہیں, تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کا غصہ بہت تیز ہوتا ہے, اور اس میں ان کا وہ نقصان یعنی اطراف میں جتنے لوگ ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں. اور عام حالات میں دیکھا گیا ہے کہ جو بچے گھر میں خدا نخواستہ تشدد کا شکار ہیں, یا حتیٰ مثال کے طور پر ان کو دوسرے طرح کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ جاتے ہیں, اتنے زیادہ وہ مسائل دخیل نہیں ہیں جتنے یہ کولڈ ڈرنکس جو ہیں دخیل ہیں, یعنی بچوں کے غصور ہونے میں. اور اس میں چیز یہ ہے کہ اگر بچے خیال یعنی آپ لوگ خیال نہیں رکھیں گے کہ ہر عمر میں معلومات ڈرنک پینا شروع کر دیا, بعض بچوں کا یہ, بعض والدین کا یہ رہتا ہے کہ انہوں نے معلومات کسی پارٹی میں چلے گئے تو وہ دودھ کی بوتل میں بچے کے کولڈ ڈرنک ڈال دی ایک دو بوتل کے, وہ بزی رہے گا, اس کو تو پسند آئے گی کیوں نہ اتنی ساری شکر اس کو مل رہی ہے. خالی آپ ایک کام کر لیجئے گا, ہر دفعہ آپ جب ڈرنک پئیں تو اس کے اوپر جو اس کے اوپر لکھا رہتا ہے کاربوہائیڈریٹ, وہ ایک بار پڑھ لیجئے گا کتنی ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے بدن میں کتنی شکر جا رہی ہے, تو آپ کو ٹھیک ٹھاک یعنی اس کا اندازہ ہو جائے گا. ایک اور چیز جو میں ضرور آپ کی خدمت میں بتانا چاہ رہا ہوں اسی حوالے سے ہے کہ اسکول میں جو لڑنا ہوتا ہے بچوں کا, دیکھا گیا ہے کہ جو بچے زیادہ لڑتے ہیں یقیناً 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 ان کا یہ ہے کہ وہ زیادہ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں, دیکھا گیا ہے, اور یہ تحقیق ہوئی ہے تقریباً 10,000 بچوں پر چائنا میں. تو بہرحال یہ تھا آج کا, یہ نہیں کہہ سکتے یہ حصہ. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس اپنے موضوع کو, ہمارے خیال میں آپ لوگوں کو تھوڑی دیر میں ختم کرنا.
بہت شکریہ, بڑی دلچسپ باتیں کہیں, اگر وقت ہوتا تو ضرور اس پہ جو ہے ہم اور بھی بات کرتے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ بھی, لیکن چلتے ہیں اپنے ہیپیٹائٹس.
ابھی جو یہ علامات شروع شروع میں ہو گئے, پھر بعد میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل موشن ٹھیک ہو جائے, بخار ٹھیک ہو جائے, لیکن 10 دن کے بعد چونکہ یہ بالکل جرسوم اپنا خراب کری یعنی شروع کر دیا جگر میں, پھر یہ ہو جاتا ہے جگر کام چھوڑ دیتے, ایک کام جگر کو ہے वो बिलीरुबिन जो है उसको चेंज करने के लिए, यानी कि वो फिर ये पीला रंगत जो होती है ना वो ख़त्म करने के लिए, चूँकि बाद वो गल ब्लैदर में चले जाते हैं,
ठीक है।
लेकिन ये हो जाता है कि फिर वो खून में रह जाते हैं,
सही है।
जब ये खून माने फिर वहाँ पे जो स्किन के जेल के नीचे ये आंखों के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता और ये खून के अंदर फिर ये पीला रंगत महसूस होती है,
ठीक है।
उस वक्त होती है कि फिर लोग अच्छा इसको यरकान हो गया,
ठीक है,
या जरकान कहते हैं या यरकान कहते हैं, वो हो गया। लेकिन ये जब हो जाती है यानी जिगर जो है ना फिर सोजिश कम हो जाता है, लेकिन काम भी छोड़ देते हैं,
सही है।
ये अलामत होती है। फिर उसके बाद उस दौरान अब देखिए ये जो 10 दिन पहले बोलते हैं ना वो जरसुमा उसको खून में उसमें फिर पाखाने में जब आ जाते हैं, फिर उस वक्त जरसुमा अगर निकल जाते हैं फिर वो पाखाना इन्फेक्टेड है,
ठीक है,
ठीक है, यानी आलूदा है। फिर ये दूसरों को भी लैट्रिन जाना फिर एहतियात करना पड़ता है, ठीक है जी। फिर ये हो गया ना अगर उसके फिर ये उनकी पेशगिरी हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए चूंकि सेल्फ लिमिटेड यानी खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, बेहतर बस ये वैक्सीन होती है उसके लिए,
ठीक है।
हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन होती है जो पाकिस्तान में इंडिया में ना एंजीरेक्स के नाम पर एक कंपनी
अच्छा।
है वो बनवाया और उसमें ये है कि जब महसूस हो गया फिर तशखीस फाइनल तशखीस कैसे होगी, ये है कि खून टेस्ट होने चाहिए। खून टेस्ट करने के लिए हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इसको यही लफ्ज़ है कि वो हम लिखे देते हैं या जिगर के वो कारकर्दगी के लिए उसको हम खास वो टेस्ट भेजते हैं, फिर वो देखने से फिर ये डॉक्टर ही समझ लेते हैं, फिर वो समझ लेते हैं, फिर वो पॉजिटिव अगर हो, फिर अगर वो पॉजिटिव यानी एक्टिव है फ़ाल यानी दूसरों को भी इंतकाल दे सकते हैं,
ठीक है।
फिर ये है कि पूरा खानदान या उन लोगों के इसके साथ रहते हैं उनको भी खून टेस्ट होने चाहिए,
ख्याल रखना है।
जी बिल्कुल। अगर उस वक्त क्योंकि ये दौरानिया जो है ना ये 3 दिन से हमने कहा बाज़ोगा 3 माह तक इन दौरानिया में फिर पूरा खानदान को भी अब चेक करना, अगर वो पॉजिटिव निकल आए फिर उसको दवाइयाँ देने चाहिए कि वो इंटरफेरॉन अल्फा 2 होते हैं
है।
के हफ्ते में 3 दफा बार लोगों 3 टाइम्स इन्हें दें,
सही, ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो गया लेकिन यहाँ पर जो है हम हसन के पास भी चलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पूछना चाहेंगे अगर वक्त हो हसन
हमारे पास नहीं है,
ठीक है, बहुत शुक्रिया।
हमारे एक साथी भी इस वक्त यानी हमारे एक नाजरीन में से एक टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, तो उनसे गुफ्तगु करते हैं, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ।
वालेकुम अस्सलाम हसन भाई, क्या हाल है, खैरियत?
बस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप अपना नाम बताएंगे?
मैं मामल खान लगा रहे बोल रहा हूँ, मेरपुर खास सिंध से। सर
कहाँ से?
मेरपुर खास सिंध से।
अच्छा, और प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है हम लोगों का? वैसे अच्छा तो है लेकिन
मैं शौक से देखता हूँ और मैं खुर्रम भाई की और आप आगे खिदमत में सलाम अर्ज करना चाहता हूँ और तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम करता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया,
बहुत ही अच्छी गुफ्तगू आपकी हो रही है और हम बहुत गहरामंद जो है इसे फायदा लेते हैं। मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम घर वाले आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं और हम आपको उसके लिए एक पहल पेश करना चाहते हैं कि इतनी अच्छी कारकर्दगी जो आप लोग हमारे लिए पेश करते हैं,
बहुत बहुत शुक्रिया।
इसमें बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा वो पीछे बच्चा रो रहा है, उसको भी अगर आप बात करने के वो यानी मूड में है तो बात करा सकते हैं आप, वरना बहरहाल आप जाके संभाल भी सकते हैं, दो काम आपके सामने हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इन नाज़रीन को ज़रूर बताना चाहूँगा कि इन्होंने अपना फ़ोन नंबर हमारे फेसबुक पेज पर डाला था और हम लोगों ने उसके ज़रिए उनसे रब्ता बरकरार किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम लोगों को कॉल किया और इंशाल्लाह हम लोगों का प्रोग्राम देखते रहिएगा।
बहुत शुक्रिया।
अच्छा, खुदा हाफिज। तो नाजरीन चलते हैं और हाँ, अच्छा, तजुर्बे के बारे में एक चीज वो करना था हमें डॉक्टर साहिबा से। इतनी सारी चीजें आपने बताई हम लोगों को, तजुर्बे का इसमें कहाँ क्या रोल है?
हमारा हफ्ते का मौजू जो है वो तजुर्बा है। तो
तजुर्बा बहुत है, एक हर शख्स अपने काम कार में तजुर्बे अहम। बेशक आप थ्योरी में आप यूनिवर्सिटियों में आप डिग्री हासिल करते हैं लेकिन तजुर्बा लाजमी होते हैं। इस तरह का एक जब हमने वो डॉक्टरी किए हैं फाइनल ईयर को पास किया है लेकिन बाद में हमको ये इंटर्नशिप करने चाहिए क्योंकि मरीजों को देखने से इस तरह का हेपेटाइटिस भी, अभी मैं आंख बंद करती हूँ मैं आपको पूरा वो बता सकती हूँ, क्योंकि मरीज को देखने से फिर एक एक अलामत सामने आ जाते हैं और ज़िंदगी में ये तजुर्बा। मसलन आपने ये कोल्ड ड्रिंक की बात करी, मैं एक बात बताऊँ, जो एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक में या एक बोतल कोल्ड ड्रिंक में तकरीबन 300 कैलोरी होती है, जो ये 300 कैलोरी एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है। कोल्ड ड्रिंक के अलावा उसके वो दांत भी खराब हो जाते हैं।
कोका
कोला में 24 घंटे एक दांत आप डालेंगे ना विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कैल्शियम को खत्म कर।
बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। आप तजुर्बे का ये यानी फर्क पड़ता है, आम हालात में हमने बता दिया ड्रिंक के मज़रात, लेकिन बाकी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई, यकीनन ये एक तजुर्बाकार शख्स हैं। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं और आप एक वीडियो क्लिप देखिएगा, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन के आप लोग जल्दी आ गए, इसमें हम ये इसको हम सेट कर रहे थे, हो नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है एक जगह पर, काफी हमने कोशिश की
ये इसको खड़ा करने में, बड़ा एक जो है टेक्निक है, बड़ी मुश्किलों से सीखी है ये टेक्निक, लेकिन बहरहाल आप भी कुछ
तो काफी हम कोशिश कर रहे हैं, बहरहाल प्रैक्टिस से चीजें, तजुर्बा इसी में होता है कि आदमी कैसे
बिल्कुल तजुर्बा
कहाँ रखे, ये छोटी चीजों में तजुर्बा काम
बिल्कुल आता है। सही आपने बात की। और हसन हमारे पास हमारे जो माहिर हैं मजहबी अमूर के, वो लाइन पे हैं या नहीं है?
हाँ बिल्कुल हमारे साथ हैं, हमारे साथियों ने बताया है। मौलाना मोहम्मद बाकर रजा साहब से हमारी गुफ्तगू होगी तजुर्बे के हवाले से, मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ मौलाना साहब।
वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं?
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, काफी दिन हो गई मुलाकात हुए आपसे, तो इसी हवाले से मैं पूछना चाहूंगा कि तजुर्बा जो है वो बहुत ही अहम चीज है हमारी जिंदगी में, लेकिन इसमें कुरान में भी बहुत सारी जगहों पे इसका जिक्र हुआ है और तजुर्बा करने वालों से फायदा उठाने का जिक्र हुआ है, इसके हवाले से हमारे नाजरीन को अगर आप बताइए तो बहुत बेहतर होगा।
जी जी, इस्लामी शरीयत में तजुर्बे के ऊपर काफी ताकीद की है, कुरान में हदीस में रिवायात में तजुर्बे के ऊपर काफी जोर दिया गया है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात है और नुक्ता है जिसको बयान करना चाहिए कि अकाइद में तजुर्बा नहीं होता, अकाइद में तकलीद नहीं होती।
अच्छा,
अकाइद जैसे की बात है, कुरान में इसी की मजम्मत भी की गई है कि जो लोग कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद मसलन फला दीन पर थे, हमारे आबाओ अजदाद फला काम करते थे, नहीं, ये इस तरह की इताअत और इस तरह का गोया तजुर्बा जो है काबिल कबूल नहीं है। और इताअत के बारे में अकायद के सिलसिले में आदमी को खुद कोशिश करना चाहिए, ये अकायद के सिलसिले में था। लेकिन जिंदगी के दूसरे मामला जो होते हैं, जैसे आदमी की जो लाइफ है, जिंदगी है, और उसके जो काम पड़ते हैं दुनियावी एतबार से, उसमें यकीनन दूसरों का जो तजुर्बा है उसकी वजह से इंसान तरक्की करता है। और आज हमारी नस्ल और हमारे बाद की नस्ल जिस तरक्की पर पहुंचेगी दुनियावी एतबार से, ये यकीनन अगर हम गुज़िश्ता लोगों का, जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, जो हमारे बड़े गुजरे हैं, जो हमारे गुज़िश्ता लोग हैं, उनके तजर्बे से अगर हम फायदा नहीं उठाएंगे तो हम वहीं फिर सिर्फ पे पहुंच जाएंगे, जीरो पे पहुंच जाएंगे।
मौलाना साहब
जी जी,
मौलाना साहब एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगा, वक्त थोड़ा सा महदूद है हमारे पास। अक्सर लोग, अक्सर जवान ये कहते हैं कि जी हम खुद हर चीज का तजुर्बा करेंगे, हर चीज को खुद अपने हाथ से करेंगे तब मानेंगे, दूसरों का तजुर्बा मानने में उनको थोड़ा सा, थोड़ी सी मुश्किल उनको पेश आती है, ये मुश्किल क्यों पेश आती है? क्या ऐसी सोच है जो बाइस बनती है कि लोग जवान जो हैं वो अपने बुजुर्गों के, अपने बड़ों के तजुर्बे को इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं?
ये जाहिर बात है, इसको अब जवानी और लड़कपन ही कहा जा सकता, और ये खुद एक नातजुर्बेकारी है कि जो तजुर्बा नहीं मानते हैं।
अच्छा,
मौलाना कायनात ने जो खत लिखा है अपने बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जो बहुत मशहूर है, खत है और बहुत तवील भी है, उसमें एक बात जो कही है इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, वो ये कहा है कि मैंने जो गुज़िश्ता लोग हैं उनकी जिंदगी में मैंने सैर की है, गुजरा हूँ, पढ़ा है मैंने, उसमें गौर किया है, सब यानी कि एक जगह पर यानी कि मैंने उनके तजुर्बों से इस्तेफादा किया है, जनाब आदम, जनाब नूह, जनाब इब्राहिम, ये पूरे अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब की जिंदगी में गुजरे हैं, जो गुज़िश्ता लोग हैं उनके तजुर्बात को देखा है, और वो चीजें अलबत्त मौला अली ये कौम को समझाना चाह रहे हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जरिए से कि हम अगर गुज़िश्ता लोगों को देखें कि उन्होंने एक काम किया और उसमें कामयाब नहीं हुए, या एक काम किया और उसमें कामयाब हो गए, तो हम अब दोबारा तजुर्बा करने की हमारी जरूरत नहीं है, उन तजुर्बे से फायदा उठाएं, क्योंकि इंसान की बुनियादी वजह यह है इसकी, क्योंकि इंसान की जिंदगी महदूद है। इंसान की जिंदगी जो होती है अमली, वो शुरू होती है कम से कम 30-40 साल से शुरू होती है, 25 साल आप लगा लीजिए बहुत ज्यादा ज्यादा, उसके बाद कितने साल बचते हैं, 25-30 साल और बचते हैं, तो इस 25-30 साल की जिंदगी में कितना तजुर्बा करेगा वो, तो मजबूर है कि दूसरे के तजुर्बों से फायदा उठाए।
बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत खूबसूरत आपसे गुफ्तगू रही हमारी, और मेरा एक जो एक बहुत अहम सवाल था, मेरे ख्याल में नाजरीन का भी सवाल होगा,
जवाब मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन चलते हैं एक वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हम लोगों का प्रोग्राम چند منٹ اور جاری رہے. خوش آمدید کہتا ہوں پھر سے آپ کو پروگرام صبح زندگی میں. ایران میں خرم آپ کو بھی معلوم ہوگا اور ناظرین کو میں ضرور بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ اور امام رضا علیہ السلام کے ولادت کے بیچ جو 10 دن ہیں اسے ایران میں عشر کرامت کہا جاتا ہے, اور اس حوالے سے اسے مختلف پروگرامز بھی ہوتے ہیں. تو اگر آپ لوگ بھی چاہیں اس حوالے سے ہم لوگوں کو بتانا کوئی نئی چیز آپ کے علاقے میں اگر ہوتی ہے, یا مثال کے طور پر آپ کسی چیز سے آپ کو کوئی چیز اچھی لگی ہے, ایران آ چکے ہیں تو وہ چیز اچھی لگی ہے, ایران میں موجود ہیں, تو اس کے حوالے سے ہمارے فیس بک پیج پر آپ لوگ ضرور کمنٹ ڈالیے گا, اور اگر تصویر بھی آپ شیئر کرنا چاہیں تو اس کے اوپر موجود ہیں چیزیں.
ایک چیز بس میں صبح سویرے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ظالم کا کبھی بھی ساتھ نہ دیجئے. اور ساتھ دینے سے مراد میری یہ ہے کہ شاید کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ ساتھ میں مراد یہ ہے کہ ظالم اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ظلم نہ کیجئے. نہیں, فکری طور پہ بھی, سوچ کے طور پہ بھی یہی کہہ دینا, یہی سوچ لینا کہ نہیں یار ٹھیک کر رہا ہے, یا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ فکری طور پہ بھی ایک ظالم کا ساتھ دیتے ہیں. میرا اشارہ جو ہے آج کل کے جو سیاسی حالات ہیں اس کی طرف ہے, لیکن دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مظلوم جو ہے اس کی مدد کرے اور ظالم کا راستہ روک کے رکھے, کیونکہ حالات جو ہے وہ بہت
بار انشاءاللہ مسلمانوں میں اتحاد قائم کرے. اور بہرحال ہم لوگوں کی بھی یہی دعا ہے. کل کے موضوع کے بارے میں
سی پی آر ڈاکٹر زینب مہدی بات کر رہی ہیں, اور سی پی آر یہ وہی ہے جیسے جو دل کی دھڑکن رک جائے یا سانس رک جائے, تو مصنوعی طور پہ جو ہے جلدی فوری طور پہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو سی پی آر کہا جاتا ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی ہیں, کل بھی بات کریں گے.
تو اس کے حوالے سے بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں ضرور ہم لوگوں کو بتائیے گا. وقت ہم لوگوں کے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے, 8:22 ہو رہے ہیں تہران میں, تو کل تک کے لیے اجازت دیں ہمیں.
جی اجازت لے لیتے ہیں,
اور اجازت دیجیے بھائی.
جی اجازت دیجیے اور خدا حافظ.